الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 1442 ہجرہ کے ایام عزا کی آج پانچ محرم، ففتھ آف محرم کی مجلس ہے، یعنی شب چھ محرم. جعفری سینٹر اٹلانٹا میں 1442 ہجرہ کے اس عشرے میں بعض مومنین کی خواہش پر بھی اور کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے میں نے امام زمانہ کے سبجیکٹ کو اختیار کیا ہے اور اس ٹاپک پہ میں بات کر رہا ہوں. اور ہمیشہ یہ یاد دلاتا ہوں کہ کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کا جہاد شروع تو کیا تھا لیکن اسے کمپلیٹ کریں گے امام زمانہ. تو امام زمانہ کا تذکرہ کربلا ہی کا تذکرہ ہے، لیکن اس وقت کے حالات میں اس ذکر کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، خصوصاً جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایتوں میں بلکہ قرآن کی آیتوں میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آنے والے کا انتظار کرنے والے بعض اوقات اس کے آنے کے بعد اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور اتنے سخت مخالف کہ تلوار نکال کر اسی کا خاتمہ کرنا اپنا مشن بنا لیتے ہیں، اور ایسا مشن کہ اپنی اولاد کو بھی وصیت کر جاتے ہیں. جنریشن میں یہ دشمنی چلتی، کون سے دشمن؟ جو محبت جنریشن سے چلتی آ رہی تھی، جو عقیدہ جنریشن سے چلتا آ رہا تھا، جو انتظار اپنے بزرگوں کے ذریعے سے ہم کو ملا تھا، اب وہ اتنا چینج ہو گیا، وہ اتنا بدل گیا کہ دشمنی کا سلسلہ جاری رہا، جس کے لیے میں نے اونلی ون ایگزامپل کوٹ کی تھی اسلامک ہسٹری سے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کی تفسیر میں بھی بعض کتابوں میں آئی ہے کہ پتہ نہیں کتنے جنریشن پہلے پیغمبر کا انتظار کرنے والے اور پیغمبر کے اتنا اگینسٹ ہوئے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے جو رسول کے زندگی میں، جو رسول کے لائف ٹائم میں ان کے بڑے بڑے دشمن تھے وہ ختم ہو گئے، ان کی دشمنی ختم ہو گئی. اور یہ انتظار کرنے والے ایسے کہ اب تک ان کی دشمنی کا سلسلہ جاری ہے، देखिए, जब कभी पैगंबर इस्लाम का नाम आता है, हमारी जाने आप पे कुर्बान, और उनकी लाइफ हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो हमारे सामने अपोजिशन में अबू जहल का नाम आएगा, अबू लहब का नाम आएगा, वलीद का नाम आएगा, उतबा का नाम आएगा, उमैया इब्ने खलफ का नाम आएगा, मक्के के बुत परस्त और काफिरों और मुशरिकों के नाम आएंगे। और उन्होंने जितना उनके पास पावर थी उसके एतबार से रसूल की मुखालिफत की, अजियत दी, तकलीफ पहुंचाई, जंगें की, लेकिन वो खत्म, एक तरह से उनकी दुश्मनी खत्म। आज ना कोई अबू जहल का नाम लेने वाला है, ना कोई अबू लहब का नाम लेने वाला है, ना कोई ये क्लेम करने वाला है कि मेरे बुजुर्ग मक्के में उस जमाने में थे और उन्होंने वसीयत की थी कि बेटा अपनी औलाद को भी ये वसीयत करना कि पैगंबर की मुखालिफत करना। लेकिन हमें ये प्लानिंग नजर आई, मैं कुछ बातें बहुत खुल के नहीं पढ़ रहा हूं, उन लोगों में जो पैगंबर का इंतजार कर रहे थे, अबू जहल को, अबू लहब को, वलीद को, उतबा को, शैबा को कभी भी नहीं था, उनके पास ये अकीदा ही नहीं था। लेकिन हमें इस अंदाज की दुश्मनी उन लोगों में नजर आई जो पहले पैगंबर का इंतजार कर रहे हैं और बाद में इनकार कर रहे हैं। और अगरचे इस वक्त मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एक जुमला कह दूं, और यही कुछ अहले बैत अतहार के दुश्मनों ने भी किया, अपनी जनरेशन को वसीयत करके गए कि हम ना भी रहें तब भी तुम अहले बैत से दुश्मनी करते रहना और उनका नामो निशान मिटाने की कोशिश करना। खैर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का मैसेज है, और मौका मिला तो शब आशूर या उसके करीब करीब थोड़ी सी बात और वाजे करूंगा। लेकिन फिलहाल बात हो रही इस प्रॉब्लम या मसले की कि इंतजार करने वाले किस तरह से बाद में इनकार करते हैं। अच्छा, अब उसके रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन वो जितने अलग अलग रीजन है सबको जाके आप अगर इन्वेस्टिगेट करें या उसके ऊपर रिसर्च करें, तो आखिर में जाके बात वहीं पे पहुंचेगी जहां कल की मजलिस में बात आई थी कि लोगों की लैक ऑफ नॉलेज और जिहालत। अब वो और भी रीजन है, उसकी तफसीर मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पे रुक के मैं दो छोटी बातें आपके सामने मेंशन कर दूं। जैसे रिवायतों में जब हमें यह बताया गया है कि हम लोग गुनाह क्यों करते हैं, चले हमें बाकी एथिस लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, जो रसूल को मानते ही नहीं है, जो इस्लाम को मानते ही नहीं है, जिनके पास आखिरत को कोई कंसेप्ट ही नहीं है, जिनके पास गुनाह और सवाब की कोई फिलॉसफी ही नहीं, छोड़े उनको। लेकिन मसला यह है कि एक मोमिन, एक मुहिब्बे अहले बैत, एक अजादार इमाम मजलूम, एक अली की विलायत का मानने वाला मौलाई, वो आखिर गुनाह क्यों करता है? और बहुत सारे गुनाह फिर होते हैं, कोई आदमी शराब भी पीता है, कोई आदमी हराम भी खाता है, कोई आदमी वाजिबात को तर्क कर देता है, कोई आदमी हराम बहुत ही बेहयाई के साथ अंजाम देता है। दो तरीके होते हैं हराम करने के। अब ये सारी चीजें मैं इस वक्त नहीं बताना चाहता हूं, इसलिए कि आज का मेरा टॉपिक या सब्जेक्ट कहीं शुरू होने से पहले ही मजलिस का टाइम ना खत्म हो जाए। तो अब ये डिफरेंट 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 जो गुनाह आदमी कर रहा, तो एक नहीं कई हदीसों में उसका कॉज रूट बताया गया कि आखिर इसकी जड़ क्या है, कहां से ये सिलसिला निकलता है। हुब्बु दुनिया रसो कुल्ले खतिया, ये दुनिया की मोहब्बत है जो हर खता, हर गुनाह, हर गलती की जड़। दरख्त की जड़ होती है, दरख्त जड़ छोटी सी जड़ है, लेकिन वो जब उससे दरख्त निकलता है, वो क्या अमेरिका में तो वो कैलिफोर्निया में या जो दूसरे आपके नेशनल पार्क हैं, कितने बड़े बड़े दरख्त हैं। क्या ये गुनाहों के इतने बड़े बड़े दरख्त, लेकिन इसका कॉज रूट जो है वो हुब्बुद दुनिया। और चूंकि रिवायतों में गुनाहों को बहुत ज्यादा कंपेयर किया गया है बीमारियों से, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो आदमी आराम से समझ लेता कि बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारियां, जिसके लिए उर्दू में एक टर्म इस्तेमाल होती है जानलेवा, जो आदमी की जिंदगी लेकर ही खत्म होती, कोई इसका इलाज नहीं। कोरोना तो इस स्टेज पर अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन फर्ज कीजिए पहुंच गया, या कैंसर के कुछ स्टेज होते हैं, या एड्स की बीमारी एक जमाने में हुआ करती थी, शायद आज भी हो, या टीबी था, कि वो बीमारियां कि जब बीमारी लग गई तो दैट मीन्स के बस अब आप इलाज करके इस आदमी की लाइफ को जरा सा प्रोलोंग कर सकते हैं, लेकिन कोई इसका क्योर नहीं। उन सब की भी अगर आप तहकीक करें, रिसर्च करें, इन्वेस्टिगेशन करें, तो पता चलेगा उसका कॉज कोई बहुत छोटी सी चीज होती है। कहा तमाम गुनाहों का कॉज जो है ना, गुनाह निकलते कहां से, जब दिल में दुनिया की मोहब्बत। इसीलिए जो दुनिया को गुनाहों से बचाने के लिए आया, हुवा लजी बासा फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, मकसद रिसालत बताया गया, हमें गुनाहों से बचाना, हमें प्योरीफाई करना, हमारे नफ्स को पाको पाकीजा करना। जो गुनाहों से बचाने के लिए आया है, तो पहले उसने गुनाहों के कॉज रूट पर अटैक किया, उसका खात्मा किया, और मौला की मशहूर हदीस आ गई कि ऐ दुनिया मैंने तुझे 3 तलाकें दे दी। ये दुनिया की तलाक का मतलब यह कि दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों से निकाल देना है। अब मैं जरा सा अपने सब्जेक्ट से हटा, लेकिन बात क्या थी बताना ये चाह रहा था कि कभी बहुत सारी अलग अलग चीजें, लेकिन वो सब की कॉज रूट एक होती, उसको आप पकड़ लीजिए कि ये कहां से ये चीजें चली हैं, उसका खात्मा कर दीजिए, 50, 60, 100, 200 चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इंसान के जिस्म के अंदर खराबी किसी एक चीज में है, फर्ज कीजिए कि लीवर में खराबी है या किडनी में खराबी है, लेकिन उसके इफेक्ट बॉडी के ऊपर 50, 60 अलग अलग जगह पड़ेंगे। अब ये मिसालें देने की जरूरत नहीं है, जाफरी सेंटर अटलांटा का ये मजमा मुझे कई सालों से सुन रहा है, और मैं भी इस मजमे को कई सालों से देख रहा हूं, तो मुझे पता है कि आपने बड़े बड़े उलमा जाकिरीन को अहमद पूर क्या जमाल पूर ताजपुर से सुनते हुए आ रहे हैं, आपका टाइम मैं क्यों वेस्ट करूं। तब ये रिवायतों में जिस तरह ये बताया गया, उसी अंदाज से जहूर इमाम में जो एक प्रॉब्लम आ रहा है कि उसके बाद कहीं हम इमाम के अगेंस्ट ना हो जाए, तो उसका कॉज रूट भी देखना है कि जो लोग इमाम के अगेंस्ट। अच्छा, अब वही फिर जुमला मैं रिपीट कर दूं, हमें गैरों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इमाम से पहले ही कौन सा अटैच है कि बाद में इमाम के अगेंस्ट हो जाए। बट ये फैक्ट बताना पड़ेगा कि जो आज इमाम के अगेंस्ट हैं, इनमें से बहुत से इमाम के मानने वाले और चाहने वाले बन जाएंगे। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो इतने टफ टाइम में आज दुनिया अगर हमारी दुश्मन होती है, तो वो सिर्फ इसी इमामत के नजरिए की वजह से। मेरा ये मजमा तो चूंकि एक खास इलाके से आया है, अहमदाबाद से, लेकिन बाकी वेस्ट में मैं जहां जहां मजलिसें पढ़ता हूं, तो मोमिनीन कराम जो वहां, कितने ऐसे होते हैं जो अपना गांव छोड़कर आए इसलिए होते हैं कि वहां पे उनको प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, दिल नहीं चाहता उनका यहां आने का। जो इकोनॉमिकल एसाइलम या रिफ्यूजी है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो एक्चुअल रिफ्यूजी होते हैं या एसाइलम होते हैं, इतने प्रॉब्लम होते हैं इसलिए वो आते हैं। तो जो हमको इतने प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से कितने ही मोमिनी मसलन पाकिस्तान से या इराक से या शाम से या और इस्लामी मुल्कों से जालिमों की वजह से हिजरत करने पे मजबूर हुए, तो हमारा उनका जालिमों का प्रॉब्लम सिर्फ मोहब्बत अहले बैत, बल्कि मोहब्बत भी ना कहिए विलायती अहले बैत और इमामते बारह इमाम। तो ये लोग क्यों इमाम के खिलाफ होंगे जिन्होंने इतने सख्त तरीन जालिमों के दौर में भी इमाम का नाम अपने सीनों में रखा। वाकान ये ट्रू लवर है इमाम के, फिर ये क्यों अगेंस्ट होंगे, कॉज रूट क्या? और मैंने कल का जो वाकया पढ़ा उसके हवाले से एक जुमला आज रिपीट किया है, अब उसको कंप्लीट। और वो ये कि मैदाने करबला से लेकर शाम के कैद खाने तक जो अहले बैत ने इतना जिहाद किया, ये हमारी सारी मजलिसें या अय्याम मैदा, ये सिर्फ करबला की वजह से जो हमने इतना बड़ा जिहाद किया कि 1400 साल से अपने इस इंस्टीट्यूशन को बाकी रखा। तो ये हमारा एक शेयर था करबला के जिहाद में, असल जिहाद तो करबला वालों ने किया। अब करबला में, करबला से स्टार्ट करें और शाम तक पहुंच जाए, ऐसा लगता है कि पूरा आलम इस्लाम अहले बैत का दुश्मन। करबला के मैदान में जो लोग आ गए उनको देख लीजिए, यानी यजीद की साइड पर, कूफे के बाजारों में जाके देख लीजिए, शाम में पहुंचिए, शाम के दरबार में जाके देखिए, शाम के कैद खानों में जाके देखिए, शाम के बाजारों में जाके देखिए। अब ये जो अहले बैत के इतने अगेंस्ट थे, तो वहां भी वही सवाल है कि आखिर कॉज रूट क्या था, असल इनको अहले बैत से दुश्मनी क्या थी। जियारत अरबईन, अरबईन का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ये हुसैन की विक्ट्री का ऐलान है। हुसैन हमेशा से विक्टोरियस थे, लेकिन अरबईन का दिन वो दिन है जब यजीद ने भी ये कबूल कर लिया, यजीद ने भी एडमिट किया, यजीद का भी कन्फेशन है कि हां मैं हार गया, अहले बैत जीत गए। उस ज़ियारत अरबईन में जिसकी अहमियत आप जानते हैं कि वन ऑफ द साइन ऑफ मोमिन, एक जुमला आता है कि नहीं आता, लयस्तन कजा इबादक मिन अल जिहाला, आए आका हुसैन आई बेयर विटनेस, मैं गवाही देता हूं कि आपने करबला का इतना बड़ा जिहाद लोगों को जिहालत से, लैक ऑफ नॉलेज जो थी, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए इतना बड़ा जिहाद किया। ये पूरा जिहाद जिसमें करबला भी है, जिसमें कूफा भी है, जिसमें शाम भी है, वहां भी यही बताया गया कि कॉज रूट था लोग जाहिल। जहूर इमाम के बाद भी प्रॉब्लम क्या होगा, जो इंतजार करने वाले इमाम के अगेंस्ट होंगे उनका असल प्रॉब्लम क्या है, जिहालत, ला इल्मी, लैक ऑफ नॉलेज। तो ये जो हमारी मजालिस बिफोर जहूर होती, इसमें हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती कि ये जो कॉज रूट बनने वाला है, जो इमाम को अगेंस्ट करेगा शिया या अहले बैत को, मेरा और किसी से कोई इस वक्त ताल्लुक नहीं, ये खराबी ना आने पाए। और फिर ये कहना पड़ता है कि आजकल के जमाना नॉर्मल सर्किमस्टांसेस नहीं है। ऑल्दो रिवायतों में कहा है कि जहूर इमाम का कभी कोई टाइम फिक्स ना करो, लेकिन हमारे चारों तरफ दुनिया की करंट सिचुएशन इतनी तेजी से चेंज हो रही, और रिवायतों में इसका पहले से ही जिक्र आ चुका है, ऑलरेडी मेंशन्ड इन सो मेनी रिवायत, कि ये सब होगा। तो अब और ज्यादा हमारी ये ड्यूटी बढ़ जाती। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मसलन अपनी एज की वजह से कि हर वक्त उनकी केयर टेकिंग करो, लेकिन अब ये कोरोना का प्रॉब्लम आ गया का, अब और ज्यादा इनकी केयर टेकिंग करना। चुनाचे दुनिया में बहुत सारे इमामबारगाहें ऐसी कि उस मुल्क की हेल्थ अथॉरिटीज ने अगर ये परमिशन दी है, लेकिन कंडीशन लगा दी कि मसलन 70+ नहीं आ सकते, 65+ नहीं आ सकते। तो आम हालात में भी 70+ को जरा सी एहतियात करना है एज कंपेयर टू एक यूथ, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी चेंज हो जाए तो हर दौर के मोमिन को इस बात का ख्याल करना था कि कहीं मैं अगेंस्ट इमाम ना हो जाऊं। रिवायतों में ऑलरेडी ये चीज मेंशन है, कुरान की आयत में इसकी तरफ इशारा है, लेकिन आजकल के हालात, भाई आजकल क्या हालात हैं? हर मोमिन जानता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, कि इस वक्त जो दुनिया की सिचुएशन है इसमें इतनी सारी साइंस ऑफ जुहूर हमें पूरा होती नजर आ रही कि हम यकीन से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन खासा हमारा दिल सेटिस्फाइड है कि अब जहूर होने वाला। ये एक अलग बात है कि अगर जहूर हो गया वो खुद एक प्रॉब्लम हमारे लिए बनेगा, वो अभी तो हमारे पास मजलिसे हैं, वो बात की चीज भी आएगी। अभी ये वाली चीज, मसलन फॉर एग्जांपल, कल जो मैंने एक रिवायत पढ़ी थी जहां पे इमाम मासूम ने फरमाया था कि मेरे बेटे के जाहिर होने से पहले दुनिया में डेथ टोल बहुत बढ़ जाएगी, मौके बहुत होंगे। और एक रिवायत ये भी है कि किसी ने इमाम मासूम से कुछ क्वेश्चन किए थे, ऑल दो वो रिवायत भी पूरी पढ़ी जाए तो ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं है, कुछ टाइम कम होता है, कुछ मैं कभी कभार बल्कि अक्सर ट्रैक से हट जाता हूं तो और ज्यादा टाइम कम हो जाता। उसने बहुत सारे सवाल किए थे, उसमें एक ये सवाल था कि मौला, दुनिया में वो कौन सा वक्त था जब अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन दुनिया की मर गई, अ क्वार्टर 25% दुनिया की पॉपुलेशन मर गई। तो इमाम मासूम ने उसका जवाब यही तो दिया कि अब तक ऐसा वक्त नहीं आया जो मैक्सिमम डेथ टोल, बल्कि शायद सवाल यह था कि दुनिया की 1/3 आबादी मरी, 33%। इमाम ने फरमाया कि अब तक ऐसा वक्त नहीं आया, अभी तक जो मैक्सिमम डेथ हुई है एक टाइम पे वो या 25% है और या फिर 16%। ये दो अलग अलग रिवायतें हैं, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा बयान करते वक्त कंफ्यूजन आपके सामने पेश की। रावी ने कहा, अच्छा मौला, वो कौन सा वक्त है जो पास्ट में था जब 25% या 16% आबादी मरी? इमाम ने फरमाया कि एक रुब या एक सुदुस। दो अलग रिवायतें, दो अलग वाकयात हैं। का वो भी बिल्कुल जब दुनिया की ह्यूमन बीइंग जो थी, ह्यूमन रेस, इसका जस्ट स्टार्ट था। अभी चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे यूरोप में 17th सेंचुरी का वो ब्लैक डेथ या प्लेग हो, चाहे लास्ट सेंचुरी का स्पेनिश फ्लू हो, जो भी हो, इतनी बड़ी तादाद में कभी लोग नहीं मरे। जब मरे हैं तो इसलिए कि बहुत ही लिमिटेड लोग थे। आदम थे, हव्वा थी, हाबील थे, काबील मलून था, चार आदमी थे, चार में से एक ने दूसरे को शहीद कर दिया। काबील मलून ने, जिससे रिवेंज भी इमाम जमाना को लेना है, हजरत हाबील शहीद का, तो काबील ने हाबील को शहीद कर दिया, चार में से एक मर गया, ये हो गया 25%। हम जब ये रिवायत सुनते हैं तो लगता है 25% दैट मींस 1 बिलियन मरे होंगे, या ये के 500 मिलियन मरे होंगे, या 2 अरब होंगे, या पता नहीं कितने करोड़ होंगे। एक आदमी खाली मरा और 25%। और वो जो मैंने कहा एक और रिवायत है, उसमें ये था कि ये चार और प्लस हाबील और काबील की बीवियां 6 थे, 6 में से एक मर गया। खैर, हाँ, ये इमाम फरमा रहे कि हाँ, एक जमाना आएगा जब दुनिया की 1/3 आबादी मरेगी, और वो ऐसा नहीं होगा कि 3 में से 1 मर गया, वो होगा बिलियंस में। आखिरी जमाना जब मेरा बेटा जाहिर होगा, उसके जाहिर होने से पहले 2/3 दुनिया की आबादी मरेगी। 2/3 मीन्स वही 2/3 जो आपके दिमाग में आ रहा, यानी अगर दुनिया इस वक्त 6 बिलियन है तो 4 बिलियन लोग मरेंगे, मिलियन नहीं बिलियन। अच्छा ये मिलियन बिलियन मेरी समझ में तो नहीं आता है, किताबों में पढ़ा है तो आपको पहुंचा दिया, वरना हमारी भाषा या लैंग्वेज में है कि 6 अरब की आबादी है तो 4 अरब मरेंगे, 4 अरब। ये अरब में काउंटिंग वाला कह रहा हूं कि जो हमारे यहां है 1,000,00,000 करोड़ अरब, आपके जहन में वो अरब न चले जाए कि कौन से 4 अरब मरेंगे, अब आप 4 आदमियों के नाम ढूंढने लगे। खैर तो बात ये हो रही कि मासूम ने फरमाया ऐसा टाइम नहीं आया, वो सिर्फ एक बार आएगा मेरे बेटे के जाहिर होने से पहले, ये रिवायत है। अब इसके बाद किसी एक इमाम ने तो ये रिवायत इरशाद नहीं फरमाई, ये कई बार रिपीट किया मासूमीन ने। तो मसलन एक और मरतबा इमाम ने खाली ये नहीं कहा कि 2/3 मरेंगे, बल्कि एक अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा कि 2/3 मरेंगे, 1/3 लाल मौत रेड डेथ और 1/3 व्हाइट डेथ सफेद मौत। जैसे अब आजकल ये पैनाडेमिक की वजह से और कोरोना की वजह से हर आदमी गूगल पे जा रहा है और हिस्ट्री को ट्रेस किया जा रहा है कि इससे पहले ऐसी बीमारियां कब आई थी, तो 1617 हिजरी में जो एक प्लेग ताऊ यूरोप में फैला था उसका नाम था ब्लैक डेथ। ये हिस्ट्री में ऑलरेडी ये लफ्ज मौजूद है ब्लैक डेथ, हमारी हदीस की किताबों में 1400 साल पहले ये लफ्ज मौजूद है व्हाइट डेथ एंड रेड डेथ। तो अब एक हदीस नहीं आई है, किसी में कहा 2/3 आबादी मरेगी, अलग हदीस, किसी में इमाम ने कहा कि अल मौत आन, मेरे बेटे के आने से पहले 2 मौतें आएंगी, एक रेड डेथ एक व्हाइट डेथ। अब ब्लैक डेथ तो दुनिया देख चुकी है कितने खतरनाक थी वो, लेकिन जैसे ही ये लफ्ज सुना तो रावी ने पूछा, मौला ये मौत तो एक मौत होती है, मौत कलर तो नहीं होता, ये कोई आपका ड्रेस तो है नहीं कि आपने कहा कि ब्लैक कलर का पहनना है कि व्हाइट कलर का पहनना है कि रेड कलर का पहनना है कि शादी में जाना है कि बर्थडे में जाना है कि पिकनिक में जाना है कि मस्जिद में जाना है कि मजलिस में, मौत तो एक मौत है। इमाम ने कहा नहीं, रेड डेथ वो मौत है जिसमें 1/3 दुनिया मरे, यानी 6 बिलियन में 2 बिलियन यानी 2 अरब। ये है जो कत्ल, गारतगरी, जंगें, शूटिंग, किलिंग, और एक और 1/3 दुनिया मरेगी, 2 बिलियन 2 अरब सफेद डेथ, वो मरेगी एक तो कैंसर से और एक बीमारियों से, मुख्तलिफ बीमारियां मुख्तलिफ वबाएं फैलेगी। अब यहां 2 जुमले में ऐसे कह दूं कि जो अपना एक अलग सब्जेक्ट बन सकता, लेकिन मैं फिलहाल अपने आप पे कंट्रोल कर रहा हूं कि जब कभी भी ये बात पहले कही जाती थी तो एक सवाल लोग जरूर करते थे कि मौलाना क्या आप इसमें बिलीव करते, दुनिया इतनी तरक्की कर गई, मेडिकल साइंस इतने पीक पर पहुंची हुई, हर बीमारी का इलाज ढूंढ लिया गया, हो सकता है कोई नई बीमारी निकले, वक्ती तौर पे कुछ लोग मरे उसके अंदर, लेकिन इतना डेथ टोल, वो सारी मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस और तरक्की एक तरफ रहेगी, एक साल में हिला के रख दिया इस एक पैनेडेमिक ने जो इतनी छोटी मखलूक खुदा की वजह से है, जो कुरान कहता है लम तरौहा, अल्लाह की ऐसी आर्मी भी है जिसको तुम देखते ही नहीं हो, अल्लाह की ऐसी आर्मी भी है नहीं देखते हो, तो हमारे जहन में आता है कि इससे मुराद तो शायद फरिश्ते होंगे जो हमको नजर नहीं आते, जिन होंगे जो नजर नहीं आते, नहीं, ये वायरस, नमरूद वाली कहानी दोहरा दी गई कि जो अपने आप को अल्लाह कहता है, नमरूद अल्लाह तो नहीं कहता है, रब कहता है, दुनिया का मालिक कहता है, एक छोटे से मच्छर ने उसका खात्मा करके बता दिया कि इंसान कितना वीक। तो एक तो मैंने कहा छोटी सी बात, सारी तरक्की एक तरफ, ये जुमला मेरी आगे वाली एक मजलिस के लिए भी काम आएगा कि जब लोग कहते हैं कि मौलाना क्या आप लोग बिलीव करते हैं कि इमामे जमाना अगर जुल्फिकार लेकर आएंगे तो तलवार का जमाना होगा, तो वो तो बात की चीज है, लेकिन मेडिकल साइंस की इतनी प्रोग्रेस के बाद सवाल ये होता था कि हाउ इट्स पॉसिबल कि 1/3 दुनिया एक बीमारी में मर जाए। और दूसरी बात ये, दो छोटे जुमले में कह रहा हूं जो अपनी जगह फुल फ्लेज एक मजलिस बन सकते हैं और बने भी हैं, यानी मैंने मजलिसें पढ़ी भी हैं। जब कभी हम बेहयाई के गुनाह का तस्करा करते हैं कि बदतरीन गुनाहों में से गुनाह है बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती, ये जो आपकी कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में औरतों का बेहया और बेहिजाब घूमना, ये जो हमारे यहाँ की मिक्स गैदरिंग है, ये जो हमारे यहाँ की शादियां हैं, ये जो हमारे यहाँ की बर्थडे पार्टियां, हत्ता आजकल तो बाज जगह पे इमाम हुसैन की मजलिस भी ऐसी होती कि एक ही ड्राइंग रूम में एक तरफ मर्द बैठे एक तरफ औरतें बैठे, 22 रजब की नियाज भी बाज जगह इस तरह से होती। और ये खाली, बाकी सारी बातें तो औरत मर्द दोनों के लिए है, लेकिन हिजाब जो मैंने कहा ये खाली औरतों का मसला नहीं है, मर्द के लिए भी एक हिजाब, जिसके लिए लफ्ज भी बहुत स्ट्रांग आया है कि जिना आंख से भी होता है, जबान से भी होता है और कान से भी होता है, आजकल तो आईफोन के जरिए होता है। तब जब ये कहा गया कि ये एक बदतरीन गुनाह है, ठीक, फिर उसमें कहा गया कि इसके नतीजे में अल्लाह बहुत सी बलाएं और मुसीबतें नाजिल करता है, तो पाकिस्तान में जो हमको जवाब मिलता था वो क्या होता कि अगर मौलाना इसकी वजह से बलाएं आती हैं तो सारी बलाएं पाकिस्तान में क्यों आ रही हैं, जो यूरोप अमेरिका हमसे ज्यादा बेहया है वहां क्यों नहीं आती। सेकेंडों में अल्लाह ने बता दिया। मुझे मालूम है कि जो मजमा मुझे सुन रहा है इसका इंडिया से ताल्लुक है, पाकिस्तान से किसी का ताल्लुक नहीं। इंडिया में भी, इंडिया तो बहुत बड़ा है, जस्ट लाइक ए कॉन्टिनेंट, जमालपुर और ताजपुर से आपका ताल्लुक है, लेकिन दुनिया में इस वक्त सेफेस्ट कंट्रीज में से एक पाकिस्तान, और बजाहिर देखें तो सबसे ज्यादा केयरलेस टाइप की मुल्क था वो इस पैनाडेमिक के अंदर भी। खैर ये मैं कहीं और जा रहा हूं, शायद रॉन्ग ऑडियंस के सामने मैंने ये बात छेड़ दी, लेकिन अल्लाह ने दिखा दिया। जब हम चाहें तो दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम जो है वो भी ऐसे अजाब में मुब्तला हो सकती है, लेकिन छोड़ें उसको, इस पर ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं है, बीमारी है, अल्लाह हर एक को इससे बचाए, हर मुल्क पर, हर कौम पर, हर इंसान पे अल्लाह अपनी रहमत नाजिल करे। तो बात ये हो रही थी कि 1/3 दुनिया इससे मरेगी और इस तरह मरेगी कि हर तरफ लोग कफन 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 कफन, यानी ऐसा लगेगा कि जैसे जब कभी बहुत बारिश होती है तो हर तरफ ग्रीनरी आ जाती है। यह हजरत खजर का एक मौजजा है कि जब किसी इलाके से गुजरते थे हर तरफ ग्रीनरी आ जाती थी, या खुद पैगंबर इस्लाम का भी यह मौजजा है, लेकिन खैर बात फैल रही। तो हर तरफ एक इतना वाइट कलर हमको नजर आएगा, कफन 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 का यह वाइट डे। फिर इमाम आई और भी डिटेल आई। अब मैं ये बताने जा रहा हूं, ये इतनी एक कंफर्म किस्म की साइन है, ये लफ्ज मैंने जरा टाइम से पहले छेड़ दिया, मुझे पहले ये बताना चाहिए था कि साइंस ऑफ जुहूर में कुछ कंफर्म है, कुछ कंडीशनल है, कुछ वीक है, लेकिन खैर अब बाद में ये बात आ जाएगी, कोई इसमें इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये सीक्वेंस चेंज हो गया। ये वो तो नहीं है ना कि एक साहब ने मसला पूछा किसी से कि भाई पेशाब करने के बाद या यूरिन के बाद पानी डाल के पाक किया जाता है, तो जो मेरे पास लोटा या कंटेनर है उसमें होल है, जितनी देर में बैठता हूं वो पानी उसमें से निकल जाता है, का कोई बात नहीं, पहले पाक कर लिया करो बाद में पेशाब कर लिया करो। हमारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इबादतों का सीक्वेंस ऐसा ही होता है। मैं इबादतों के नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इतनी मैंने गंदी मिसाल दे दी है, कि इस वक्त मैं इबादतों के नाम नहीं लेना चाहता, बताऊंगा कि एक सीक्वेंस है इस्लाम में इबादतों, अपनी मर्जी नहीं चलती, पहले ये कर लो फिर वो कर लो। खैर तो अब ये मेरी तकरीर कोई ऐसी सीक्वेंस वाली तो है नहीं, कंफर्म निशानियां उसमें ये 2/3 मौत। तो आप देखिए जो बहुत कंफर्म निशानी होती है उसको एक बार नहीं कई बार बयान किया जाता, ये साहिबान इल्म है उनको पता है, इसके लिए टर्म हमारे यहां इस्तेमाल होती है कि हद तवातुर तक बात पहुंच जाती। अब ये कहा गया कि ये बस सिर्फ ये मौत कितनी होगी उसको बयान करने का तरीका। पैगंबर की हदीस आई कि आखिरी जमाने में इतनी कसरत से मौतें होंगी कि डेड बॉडीज पड़ी होंगी, कोई उनको दफन करने वाला ही नहीं होगा। जिंदा लोग कम रह जाएंगे, मैयतें बढ़ जाएंगी। उठा उठा के जैसे कचरे को या कूड़े को फेंका जाता है, इस तरह से फेंकना पड़ेगा। चांस ही नहीं होगा कि फुल प्रोटोकॉल के साथ दफन किया जाए। तो अब उसमें अल्लाह के रसूल ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर कोई परिंदा 70 डेज कंटिन्यूअस फ्लाई करे विदाउट कहीं रुके हुए, तो उसे एक इंच जमीन नजर नहीं आएगी। रिवायत का लफ्ज है शिबरा, एक बालिश जमीन नजर नहीं आएगी। क्यों कहा? इतनी डेड बॉडीज होंगी, मैयत पे मैयत, मैयत पे मैयत, कि कहीं पे जमीन नजर आने का चांस ही नहीं होगा। 70 दिन तक एक परिंदा उड़ रहा। रसूलुल्लाह के जमाने में तो ये प्लेन वगैरह थे नहीं। इतनी मौतें, कहा कि इंसान चल नहीं पाएगा। अगर कोई जमीन पे चलना चाहे तो उसे मैयतों पर पैर रख के चलना पड़ेगा। जो हमारी नस्ल के लोग हैं, यानी एक तरह से कहिए 60+, अगर उन्होंने अपनी जवानी में कुछ हज किए हैं तो उनको याद होगा कि हज के दौरान जो कुर्बानी की जाती है, जो वाजिबात में शामिल है, वो बहुत ही टफ वाजिब था उस जमाने में। और जब हम जाते थे स्लॉटरिंग हाउस में ताकि कुर्बानी करें, वहां हर आदमी को, हर इंडिविजुअल को खुद जाके कुर्बानी करना, तो वहां पे इसी तरह से कटे हुए बकरे, मरे हुए बकरे पड़े रहते थे। न कोई उनके डिस्पोजल का इंतजाम था, न ही वहां नजर आ रहा था। बकरों पर पैर रखकर हमको चलना पड़ता था। मरे हुए बकरे, कटे हुए बकरे, जबाशुदा बकरे, हाजियों के कुर्बानी वाले बकरे। तो रिवायत में आखिरी जमाने में इस अंदाज से हालात को बयान किया गया। अब यह एक किस्म की एक कंफर्म निशानी हो के रहेगी। फिर यह कि इमाम मासूम ने एक ख्वाहिश जाहिर की, काश हमारे शिया उस रिमेनिंग थर्ड, वन थर्ड में आ जाए। इसका मतलब यही हुआ कि वो जो 2/3 मरेंगे उसमें बहुत सारे मोमिनीन भी होंगे, और यह भी इसका मतलब यह हुआ कि जो 1/3 होंगे, ऐसे चांसेस हैं कि मोमिन अपने आप को बचा ले उस मौत से और इस रिमेनिंग 1/3 में आ जाए। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इंशाल्लाह इसको मैं आगे चल के बयान करूंगा। मगर इतनी बड़ी मौतें शायद अभी तक नहीं हुई। तो मैंने कहा ना कि वो साइंस जो हमको ये बता रही है कि इमाम के जहूर का जमाना बहुत करीब आ चुका है। मजलिस का असल सब्जेक्ट वही प्रॉब्लम है कि हमारा ईमान बच जाए जब इमाम आए। ऐसा ना हो कि इमाम की गैर मौजूदगी में तो ईमान बचा लिया और इमाम के आने के बाद अपने ईमान को खो दिया, लूज कर दिया। तो वो जो साइंस हैं, अब उनमें से एक हदीस और सुन लीजिए। ये भी मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं, लेकिन चूंकि आजकल हमारे एक बहुत ही हॉट इश्यू और बर्निंग इश्यू मर्जियत भी बन गया, बहुत अहम मसला बन गया है मर्जियत का, और इवन खुद इस पैनडेमिक के हवाले से जो मराजे कराम के इंस्ट्रक्शन हमारे पास आए, उसके हवाले से भी बाज लोगों ने मराजे कराम का यह मजाक उड़ाया या उनके इंस्ट्रक्शन को भी अहले बैत की दुश्मनी करार दिया। ये हमारी आजादारी बंद करना चाहते हैं, या हमारी आजादारी खत्म करना चाहते हैं। देखो, ये फजाइल तो पहले ही सब इंकार करते थे, आजादारी पर ये हाथ नहीं डाल पा रहे थे, देखो अब इन्होंने आजादारी भी खत्म कर दी। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इस मौजू पे बात नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर और जाकिर इस पे कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, वो कुछ ज्यादा बोलते हैं, ये भी मैं बता दूं, लेकिन थोड़ा इशारा जरूर है। तो अब एक और हदीस है, और ये हदीस इस एतबार से बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये उस हदीसों में से एक है जो शिया उलमा ने भी अपनी किताबों में लिखी और सुन्नी उलमा ने भी लिखी, और अलग अलग तरीके से। सुन्नी उलमा के पास ये हदीस आई है उनके रावियों के जरिए से, और हमारे पास ये हदीस आई है हमारे रावियों के जरिए से, हमारे से मतलब अहले बैत के शागिर्दों के जरिए से। और इस हदीस का एक टुकड़ा नहजुल बलागा के खुतबे के आखिर में भी आया है, ज़हूर इमाम से रिलेटेड जरा सी हदीस। मैंने बहुत पढ़ी है, इसलिए जो लोग मुझे बहुत रेगुलर सुनते रहते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होती कि अय्याम अज़ा में इतने बड़े बड़े उलमा, इतने अच्छे उलमा, पूरे साल मजालिस की तैयारी करने के बाद आज़ादारी की खिदमत और मोमिनीन की खिदमत के लिए आते हैं, उनको सुनिए। इन द जाफरी सेंटर अटलांटा की कमेटी ने मुझको इतना प्रेशराइज किया है, तो मैंने ये मजलिसें पढ़ना कबूल कर ली हैं। अगर इनकी ये मोहब्बत और खलूस ना होता तो शायद मैं इस साल मोमिनीन कराम को ज़हमत से बचाता, क्योंकि आजकल का तो मसला ये है ना कि ऑलमोस्ट हर मोमिन अपने घर में बैठा हुआ, उसके पास चॉइस बहुत ज़्यादा, एक आईफोन उसके पास हो या एक आईपैड या आई फोन या एक लैपटॉप, एक वक्त में इतने सारे उलमा को सुन सकता है एक स्टाइल में। पहले तो था कि नहीं, जो हमारे शहर की इमाम बारगाह वहां पे हम जाएंगे तो सफेदा पे बैठेंगे, फिजिकल हमारा अटेंडेंस है, वो मजलिस का मजा ही कुछ और है, आईफोन की मजलिस। अब ऑलमोस्ट सारी मजलिस एक जैसी हैं। तो बात मैं ये कह रहा था कि कुछ लोगों को मेरी बात चीजें रिपीट लगेंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक निशानी इसलिए भी बनी कि अहले सुन्नत भाइयों के यहां भी उनके रावियों के हवाले से आई, हमारे यहां भी आई, नहजुल बलागा में भी इशारा हुआ, और इसका जो मैसेज हिडन अंडर द लाइन है वो है मरजईयत। वो हदीस क्या, वो हदीस ये है कि अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया कि आखिरी जमाने की एक निशानी ये होगी, और इसे भी कंफर्म समझिए, बल्कि इतना कंफर्म समझिए कि ये जमाना आ चुका है कि लोग हराम खुदा को अपनी मर्जी से हलाल करेंगे, हलाल खुदा को अपनी मर्जी से हराम करेंगे। अब ये जुमले की भी तशरीह है, लेकिन चूंकि आज मसाइब ऐसे होने वाले हैं जिसमें मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, इसलिए मैं यहीं पे रुक जाता हूं। और फिर पैगंबर ने मिसाल भी दी, वो पूरी मिसाल भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इसलिए कि मजलिस का वक्त बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। ये वो तारीखें अब शुरू हो गई हैं जिसमें गम का बयान ज्यादा अहम भी है और ज्यादा टाइम भी चाहता। कहा कि हराम को हलाल, हलाल को हराम करेंगे, खास तौर पे चार गुनाहन कबीरा बड़े आराम के साथ लोग हलाल कर देंगे। एक शराब को हलाल करेंगे ड्रिंक के नाम पर, और सूद को हलाल करेंगे प्रॉफिट के नाम पर। यानी प्रॉफिट का मतलब वो नऊज़ु बिल्लाह रसूल वाला नहीं, वो नफा ब्याज। कभी तो ऐसा होता है ना कि इंसान एक काम करता है हराम, वो कहता है आई डोंट केयर, वो इस चक्कर में नहीं पड़ता है कि इसके बारे में कुरान क्या है, हदीस क्या है, लेकिन कभी होगा बहुत टेक्निक के साथ एक क्राफ्टमैनशिप का मुजाहिरा किया जाएगा कि पहले इसको हलाल बनाओ, और जब ये हलाल हो जाएगा तो इसके बाद तो फिर बड़े आराम से कर सकते। और इसमें बेहतरीन जो इसका मास्टर था कि हराम को अगर हलाल करना है या कोई गुनाह को जायज करना तो नॉर्मल तरीके से नहीं करो, अपनी महारत का मुजाहिरा करो, एक क्राफ्टमैनशिप कि उसको पहले इस तरीके से पेश करो कि लगे कि ये तो कोई बुरा काम ही नहीं है, बहुत के बल्कि बहुत अच्छा काम। इसका जो बेहतरीन हमको एक्सपर्ट नजर आ रहा वो दुश्मनान अहले बैत की फर्स्ट रैंक के अंदर है, जिनको आप ज़ियारत आशूरा में भी याद करते हैं। यजीद मसलन वन ऑफ देम, नॉट द ओनली वन। मैदान करबला में आका हुसैन के खिलाफ ऐसे ही फौजें नहीं भेजती, बस मैं हुक्मरान हूं हाकिम हूं, मेरी मर्जी है मैं जिसको चाहे कत्ल करूं। नहीं, पहले बड़ी महारत के साथ वो फतवे लिए गए जिसमें कत्ल हुसैन को वाजिब करार दे दिया गया। खारज अल हुसैन अन हद ही फवजबा कत्लहू बिसैफ जद। हुसैन ने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली, माशरे में फितना फसाद बर्पा कर रहे हैं, पर वाजिब हो गया हुसैन का कत्ल उनके नाना की तलवार से, यानी उनके नाना की शरीयत के हिसाब से। चुनाचे कितने ही ऐसे दुश्मनान अहले बैत थे जो करबला में यह समझ के आए थे कि यह हमारा वाजिब फरीजा, लेकिन जुमला यह आया सैफ जद्दी हुसैन को हम हुसैन के नाना की तलवार से शहीद कर रहे हैं। और इसलिए हुसैन ने बाकी चीजों के अलावा, इसका जवाब हुसैन ने कई तरीके से दिया, लेकिन बाकी चीजों के अलावा इसका जवाब हुसैन ने अपने 18 साल के अकबर के जरिए भी दिया है कि अकबर को देखोगे तो तुम्हें रसूल याद आ जाए। क्या लश्कर यजीद में ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने रसूल का जमाना देखा हो? थे, बहुत बूढ़े हो गए होंगे, औरों को छोड़े, खुद हमारे साथ लश्कर यजीद का सरदार पैगंबर का जमाना देखे हुए हैं ना। अली अकबर, हुसैन का अकबर, 18 साल का। खाली हम अली अकबर नहीं कहते, जब भी कहते हैं अली अकबर तो साथ में कहते हैं शबीह रसूल खुदा। मैदान करबला के कई शहीद पंजतन में से मुख्तलिफ शख्सियतों के शबीह, लेकिन अकबर के हवाले से तो गोया समझिए उसका अकबर का नाम ही बन गया शबीह रसूल खुदा। वो जो हुसैन के खिलाफ फतवा दिया गया कि अपने नाना की तलवार से वो कत्ल होने जा रहे हैं, तो मेरे नाना की बात करते आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं मेरा नाना। हुसैन के लश्कर में कौन सा बहुत बड़ा लश्कर था? छोटी सी लिमिटेड आर्मी, 50, 60, 70 अगर बच्चों को निकाल दे, लेकिन अजान देने वाला एक खास मौजिन था। सुबह आशूर हुसैन ने उससे कहा कि आज तुम्हें अजान नहीं देगा, आज मेरा अकबर अजान देगा। नमाज कौन पढ़ा रहा है यह हरेक को नजर नहीं आता है, अजान कौन दे रहा है यह आवाज हर एक सुनता। और एक टीले पे जाके अकबर ने अजान दी, तो अकबर नजर भी आ रहे हैं फौज यजीद को, अकबर की आवाज भी हरेक के कान में आ रही। क्या अकबर की आवाज सुन के तुम्हें मेरा नाना याद नहीं आ रहा? क्या अकबर का चेहरा देख के तुम्हें मेरा नाना याद नहीं आ रहा? अगर मेरे नाना का चेहरा भी याद आ रहा है, अगर मेरे नाना की आवाज भी याद आ रही, ये दो को मिलाओ, तो क्या तुमको याद नहीं आ रहा है कि मैं नाना की गोद में मिंबर पे बैठा था और नाना खुतबा देता जा रहा है, मेरा तारुफ कराता जा रहा? और वाकई हुसैन का कितना बड़ा इम्तिहान है अपने अकबर को कुर्बान करना। एक आम सा 18 साल का बेटा किसी का हो, बाप कहता मैं मर जाऊं बेटे का लाशा न देखूं, और हुसैन ने कहा नहीं, सबसे पहला लाशा हुसैन अगर देखेगा अपने खानदान में तो अपने बेटे का देखेगा। ऑल्दो करबला की बहुत सी रिवायतों में एक से ज्यादा रावियों के वर्जन हैं, लेकिन अली अकबर की शहादत के हवाले से आजकल ऑलमोस्ट ये तयशुदा बात है कि जब असाब इमाम शहीद हो गए और बनी हाशिम के शहीदों का वक्त आ गया, तो हुसैन ने सबसे पहले अली अकबर को आवाज दी, अकबर बेटा मैदान में पहले तुम जाओ। हुसैन पहले अपने बेटे का लाशा उठाएगा, फिर बहन के बेटे, फिर भाई की औलादे। चुनाचे हजरत अली अकबर की जो जियारत हम खुद करबला में जाके पढ़ते हैं, हजरत अली अकबर की जरी को पकड़ के, यानी वो आका हुसैन की जरी के पाई थी, السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل. جملہ کہتے ہیں کہ سلام آپ پر جو آپ نسل رسالت کے پہلے شہید ہیں. اکبر بیٹا سب سے پہلے مقتل میں تمہیں جانا. اور اکبر نے یہ سنا کہا بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا تھا کہ کب مجھے مقتل میں جانے کی اجازت ملتی ہے. جوان بیٹا بوڑھے باپ کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے, بابا میں تو کب سے اجازت کا انتظار کر رہا تھا. آپ میں سے جس جس کے 18 سال کے جوان بیٹے ہیں ذرا سوچئے گا کہ بوڑھے باپ کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی. اور اسی لیے اکبر کی شہادت کے موقع پر حسین کا جو غم ہمیں نظر آتا ہے کچھ ایسی چیزیں نظر آتی جو کسی اور شہید کے حوالے سے نظر نہیں آتی. اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے, بابا میں تو کب سے اجازت کا انتظار کر رہا تھا, گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل کی جانب چلنا چاہتے ہیں. حسین نے اکبر کو روک دیا. 30,000 کی فوج یزید سے اکبر کا مقابلہ کرنا آسان ہے, شیر خدا کا پوتا ہے, حیدر کرار کا بیٹا ہے, فاتح خیبر کی نسل میں ہے. 30,000 کا لشکر مسئلہ نہیں ہے, لیکن حسین نے اس سے پہلے ایک اور امتحان میں ڈال دیا ہے. اکبر کے لیے یہ زیادہ مشکل امتحان ہے. کہا بیٹا کہاں چلے؟ کہا بابا آپ ہی نے تو حکم دیا میں مقتل کی جانب جا رہا ہوں. کہا وہ میں نے اجازت دی, لیکن تم اس وقت تک مقتل میں نہیں جا سکتے جب تک کہ زینب سے اجازت لے کے نہ ہو. ہائے کوئی اکبر کے دل سے پوچھے, 30,000 کی فوج کا مقابلہ کرنا آسان ہے, لیکن 18 سال کا بیٹا جا کے اپنی زینب جیسی ماں سے کہے کہ اب میں مرنے جا رہا ہوں, کیا قیامت گزر رہی ہوگی اکبر کے دل پہ؟ کیسے میں یہ مرحلہ طے کروں؟ کیسے میں یہ امتحان دوں؟ لیکن پہلے تو ام لیلہ کے خیمے میں پہنچی, ماں کو بھی الوداع کرے. مجلس سننے والی میں کچھ ایسی مائیں ہوں گی جن کے جوان بیٹے, ایک بیٹا ہے خالی اکبر, ام لیلہ کا تو اکلوتا بیٹا, سر سے پیر تک دیکھا ایسا جوان ہے رانا جس کو دیکھ کر غیروں کو یہ خیال آتا تھا کہ ارے یہ کیسے مارا گیا ہوگا, یہ ماں ہے. لیکن اکبر نے دیکھا میری ماں مصلی بچھا کے جا نماز بچھا کے بیٹھی. گھبرا کے کہا اماں تو ابھی کسی نماز کا وقت تو ہے نہیں, زہرین کی نماز پڑھی جا چکی ہے, مغربین میں بہت وقت باقی. کہا بیٹا میں نے ایک منت مانی, تجھے پتا ہے میرا یزید سے رشتہ, منت میری یہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرا لال مقتل میں پیچھے ہٹ جائے, لوگ کہیں کہ یہ ماں کے خون نے اثر دکھایا. میں نے منت مانی ہے کہ جتنے جلد میرے اکبر کا لاشا آئے گا میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گی. اکبر نے کہا کہ اماں میں تو سوچتا ہوا آیا تھا ماں کو کیسے الوداع کروں گا, تو نے تو اتنا آسان کر دیا ہے, اب تیرا اکبر مرنے جا رہا ہے. ام لیلہ نے کہا بیٹا ذرا جلدی سے جا مجھے اپنی منت کو بڑھانا. مگر زینب, اکبر دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے زینب نے اپنی گود میں لے لیا, ماں ام لیلہ ہے, لیکن ماں سے بڑھ کے اگر اکبر کو کسی نے پالا ہے تو وہ زینب کبریٰ. کیسے جا کر کہیں کہ میں مرنا چاہتا ہوں؟ شہزادی زینب کے اس خیمے میں گئے جو آج بھی کربلا میں خیمہ گاہ کے اندر موجود. دیکھا میری پھوپھی زینب زمین پہ بیٹھی, اکبر بھی جا کے ماں کے قریب بیٹھ گئے. بیٹھ کیا گئے؟ ماں کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے. پھوپھی زینب کی گود میں سر رکھ کے اکبر لیٹ گئے. اکبر کا سر گود میں آیا, زینب نے اپنی انگلیوں سے اکبر کے بالوں میں کنگھی شروع کی. کہا بیٹا اکبر یہ جنگ کا موقع ہے, اس وقت کیسے آئے؟ پھوپھی اماں ایک بہت اہم مسئلہ پیش آ گیا, وہ پوچھنے آپ کے پاس آیا ہوں. زینب حیران ہو گئی. کہا بیٹا تمہارا باپ امام وقت ہے, دنیا اس سے مسئلہ پوچھنے آتی ہے میرے پاس؟ کہا کہ نہیں پھوپھی اماں, میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا جو مانگا ہے آپ سے مانگا ہے, جو پوچھا ہے آپ سے پوچھا ہے, یہ مسئلے کا جواب بھی آپ دیں گے. زینب نے کہا اچھا اکبر بیٹا پوچھ کیا پوچھنا؟ کہا اتنا بتا دیجیے آپ کا رتبہ زیادہ ہے کہ آپ کی دادی فاطمہ یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ؟ ماں کا نام سنا زینب تڑپ گئی, گھبرا گئی, بے اختیار زمین سے کھڑی ہو گئی. اکبر اتنا سمجھدار ہو کے ایسا سوال کر رہا؟ ارے کہاں فاطمہ زہرا, ایک شہزادی, کہاں میں ان کی ایک کنیز؟ اکبر نے کہا تو پھوپھی اماں اگر دادی کا رتبہ آپ سے بلند ہے تو ایک کام تو کریں, آج دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیں. زینب نے اکبر کو دیکھا کہ اکبر بیٹا اگر کسی اور طرح سے کوئی مجھے بتاتا میرا اکبر مرنے جا رہا تو तो पता नहीं जैनब पे क्या गुजरती, लेकिन इस तरह से तूने कहा जा, मैंने शहजादी फातिमा के लाल पर अपने लाल को कुर्बान किया। और अकबर एक मरतबा खेमे से बाहर आए, अब खुद दुश्मन की फौज कह रही कि करबला के जितने भी शहीद मख्तल में गए थे, इतनी देर खेमों में किसी को ना लगी जो अकबर को लगती, बल्कि वहां तो यह था कि बार बार दरे खेमा वो पर्दा उठता था और पर्दा गिरता था, लगता था अकबर आना चाहते हैं, फिर लगता था अकबर रुक जाते हैं। हो क्या रहा, अकबर जैसे ही खेमे से निकलना चाहते हैं, कोई बहन आके लिपट जाती, अकबर भैया एक बार तो और अपना चेहरा दिखा दो, कोई फूफी आके चिमट जाती, अकबर बेटा मेरे लाल एक बार तेरी फूफी और तेरी जियारत कर ले। यहाँ तक के इमाम मजलूम ने कहा बीबियों मुसाफिर का रास्ता ना रोको, अकबर को जिहाद में दे हुक्मे इमाम आ गए। बीबियों ने 18 साल की अकबर का रास्ता छोड़ा और अकबर घोड़े पे सवार होके मख्तल की जानिब चले। आका हुसैन ने देखिए, और कोई शहीद आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आका हुसैन ने एक बार पहले तो आसमान की जानिब देख के खुदा से एक जुमला कहा, फिर उमर साथ को देख कर एक जुमला उससे कहा, आसमान को देख कर कहा खुदा बंदा अब मैं उसको भेज रहा हूं जो सूरत और सीरत में तेरे रसूल से सबसे ज्यादा मुशाबे। और उमर साद को देख कर कहा कि है उमर साद मेरा बेटा मख्तल में जा रहा है, खुदा तेरी नस्ल को काट के रख दे। ये जुमला कहा और अकबर के पीछे चले। अकबर घोड़े पे सवार 30,000 का लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार, अली का पोता है जिस अली को परवाही नहीं थी कि मौत पे जाता है या मौत उस पे आती है, अकबर के लिए मरना कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसा लगा कोई मेरी सवारी के पीछे पीछे आ रहा है। एक बार मुड़ के देखा तो क्या देखा, मेरा 60 साल का बूढ़ा बाप मेरे सवारी के पीछे घोड़े के पीछे पैदल चल रहा है, मगर किस तरह चल रहा है, जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार बढ़ रही है हुसैन भी अपनी रफ्तार पैदल हैं रफ्तार बढ़ा रहे। अरे जवान बेटा ये मंजर देखा गैरत बर्दाश्त न कर सकी, सवारी को रोक के उतरे, कहा बाबा आप इस तरह से मेरी सवारी के पीछे आ रहे हैं, मैं कैसे मख्तल में जाऊं। अजीब जुमला कहा, यह जुमला भी हुसैन ने किसी मौके पे नहीं कहा। हुसैन कहते हैं अकबर तेरा कोई जवान बेटा नहीं, तुझे नहीं पता इस वक्त बूढ़े बाप के दिल पे क्या गुजर रही है। अकबर ने हाथ जोड़े, लेकिन बाबा मैं कैसे मख्तल में जाऊं। हुसैन ने कहा अच्छा जा बेटा मैंने खुदा हाफिज कहा। अकबर घोड़े पे सवार हुए, बात को मुख्तसर करता हूं, अकबर घोड़े पे सवार हो गए, हुसैन अपने बेटे का जिहाद देखने के लिए करीब एक किले पे आके बैठ गए, और उधर जैनब खेमे के दरवाजे पर पर्दा पकड़ के पर्दे के पीछे खड़ी हो गई, और उधर अपने खेमे में उम्मे लैला मुसल्ले पे जाके खड़ी हो गई। अकबर की निगाहें फौज पर हैं, हुसैन अकबर को देख रहे हैं, जैनब हुसैन को देख रही हैं, उम्मे लैला जैनब को देख रही हैं। शेर खुदा के पोते का जिहाद बयान करूं तो पूरी रात भी कम है, लेकिन एक वक्त आया सीने पे मर्ची का फल लगा। एक बार फातिमा जहरा का ये पोता घोड़े से जमीन करबला पे गिरा, अकबर जमीन पे गिरे, हुसैन टीले से गिरे, जैनब खेमे के पर्दे पे गिरी, और उम्मे लैला शुक्र के सिजदे में गिरी। शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह, अरे मेरी कमाई काम आई, मेरी मन्नत बढ़ गई। और उधर हुसैन टीले से गिरे, गिरे संभले खड़े हुए, आवाज दी बेटा आईना आईना अली बेटा कहाँ हो, मुझे नजर नहीं आ रहा, आवाज दो ताकि तेरी आवाज सुन के तेरा बाप तेरे सरहाने आए। है मैदान करबला का कोई और शहीद, हुसैन की आंखों की रोशनी कुछ देर के लिए चली गई, हुसैन को नजर नहीं आ रहा है। अकबर ने आवाज दी इलैया इलैया, बाबा इधर आइए बाबा इधर आइए, अल्लाह आप में से हर एक को मकामे अली अकबर लेके गया है ना। हुसैन इसी तरह से आवाज सुन के मकामे अली अकबर पे पहुंचे, क्या देखा 18 साल का जवान बेटा अपने खून में तड़प रहा है। खुदा किसी बाप को खुदा किसी माँ को उनके जवान बेटे की यह हालत न दिखाए। अकबर जमीन एक करबला पे है, सीने से निकलने वाला खून चारों तरफ जमा है, अकबर एड़ियां रगड़ रहा है। हुसैन एक बार अकबर के करीब गए, अकबर के करीब गए, एक हाथ अकबर की गर्दन के नीचे रखा। रखा, एक हाथ अकबर के पैरों के नीचे रखा, अकबर को उठाना चाहा, या अली मदद करके उठाना चाहा, लेकिन हाय मेरा ये बूढ़ा बाप, ये बूढ़ा बाप इमाम, ये जईफ बाप इमाम, ये 18 साल का जवान हुसैन से न उठाया गया। एक बार जमीन करबला पे दोबारा अकबर को लिटाया, 3 बार कोशिश की, मेरा जईफ इमाम, मेरा बूढ़ा इमाम, हाँ ये बाप इमाम भी है बाप भी है। जब 3 बार कामयाब न हुए, कहा अकबर बेटा तुम भी तो अपने बाप की कोई मदद करो। अकबर ने कहा बाबा मैं क्या मदद करूं। कहा कि तुम्हारे दोनों हाथ सीने पर है ना, ये हाथ मेरी गर्दन में डाल दो ताकि थोड़ा सा उठाने में आसानी हो। अकबर ने एक हाथ हटा के सीने से हाथ हटाया, बाबा की गर्दन में डाला। हुसैन ने कहा अकबर दूसरा हाथ भी तो हटाओ। हाय 18 साल का अकबर तड़प के कहता है बाबा ये हाथ मैं अपने सीने से नहीं हटा सकता, पर ये सुनना था। एक बार हुसैन चंद कदम पीछे हटे, अकबर बेटा ये क्या कह दिया, क्या तुझे नहीं पता तुम्हारा बाप कितना साबिर है, जरा ये हाथ भी तो हटाओ। हुसैन देखे तो सही क्या बात है। अकबर ने हाथ हटाया और हुसैन ने देखा बर्ची का टूटा जवान के सीने में बेवस्त है। हाय ये बूढ़ा बाप, बस एक मर्तबा इस तरह से अकबर के करीब दुजानू बैठा जैसे आप नमाज के तशहुद में बैठते हैं और बर्ची के फल पे हाथ डाला, बर्ची निकालना चाह रहे। मेरा दिल चाहता मैं तड़प के कहूं अय अल्लाह के रसूल, अय रसूल खुदा जरा जल्दी से करबला के मैदान में आइए, मगर अकेले ना आइएगा, अपने साथ खलील खुदा इब्राहिम को लेके आइएगा। अय इब्राहिम आके देखिए यह करबला का इस्माइल है, बूढ़ा बाप बर्ची का फल निकाल रहा है लेकिन न बाप की आंखों पे पट्टी है न हाथों में राशा है। किस इस्तकामत के साथ हुसैन ने बर्ची का फल निकालना चाहा, बर्ची हिली तो जिस में बर्ची थी अकबर का कलेजा हिला। कलेजे का हिलना है कि सीना हिला, अकबर का सीना हिलना था, अकबर का जिस्म हिला, जमीने करबला हिले, खेमे हिले, पर्दे हिले। जैनब की आवाज आई, भैया अगर मदद की जरूरत है बहन तेरी मदद को आने को तैयार है। हुसैन ने अकबर का लाशा छोड़ दिया, जैनब खेमे से बाहर ना आना, अरे तेरे पर्दे पे मेरा अकबर कुर्बान। मौला थोड़ी ही देर गुजरेगी, शामे गरिमा आएगी, यही जैनब होगी, चादर छिनेगी, खेमे जलेंगे, आपकी यही जैनब मैदान करबला में शामे गरीबा के घेरे में। वाह अकबरा और वाह हुसैना की फरियाद बदल कर रही होगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा बंदा मसाहिक बे अकबर ऐसे के वाकान इंसान का कलेजा पानी हो जाए। तुझे वास्ता हुसैन के इस इम्तिहान का, तुझे वास्ता फातिमा जहरा का जो अपने पोते के मसाहिक को सुन रही हूं। मजलिस सुनने वाले तमाम मोमिनी को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा, खुसूसन औलाद के हर दुख और सदमे से महफूज फरमा। दुनिया के मौजूदा हालात में तमाम दुनिया के इंसानों खास तौर पर आजादारानी इमाम मजलूम की मदद फरमा। जिस अजीम मकसद के लिए कुर्बानी दी गई खुदा बंदा उसके खातिर भी अपनी तरीन शायद, जब अकबर कुर्बान हो गए तो हम क्या हैं, हमें भी हर कुर्बानी का जज्बा अता फरमा। खुदा बंदा जो जो ये मजलिस सुनते वक्त कोई हाजत अपने दिल में रख के बैठे मुश्किल कुशा के इस पोते का वास्ता, उनकी तमाम हाजतें पूरी फरमा और इन मजालिम के इंतकाम के लिए वारिस मासूमीन इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।